फिर छात्र रहो। नमस्कार। तो बात हो रही थी शब्द शक्ति की, और शब्द शक्ति के बारे में आप विचार कर चुके हैं, तो दोहरान के रूप में एक बार वापस समझ लें कि शब्द शक्ति संबंधी बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आएगा। अब प्रश्न कैसे आए, या तो सीधी परिभाषा पूछी जाएगी कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए, या अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति में क्या अंतर है परिभाषित कीजिए। यानी या तो सीधी परिभाषा कोई भी शब्द शक्ति की पूछी जा सकती है, या 2 शब्द शक्ति में अंतर पूछा जा सकता है, या कोई उदाहरण दिया हुआ होगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। जैसे ये तो मेरी गाय है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है परिभाषित कीजिए। तो अब आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये तो मेरी गाय है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है और आपको लक्षणा की परिभाषा लिखनी है। तो सबसे पहले हमने बात की थी शब्द शक्ति, यानी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं, या जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता हो वह शब्द शक्ति कहलाती है। फिर आपने ये जाना कि शक्ति के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। यानी जिस शब्द में वाचार्थ प्रकट हो तो वो वाचक कहलाता है, और लक्ष्यार्थ जिस शब्द में प्रकट हो तो वो लक्षक, और ध्वनियार्थ या व्यंग्यार्थ प्रकट होता हो वो व्यंजक कहलाता है। और इन शब्दों के आधार पे शब्द शक्ति है वो 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ वाक्य को पढ़ते ही उसका अर्थ है वो समझ में आ जाता है, यानी सीधा मुख्य अर्थ निकलता है, या यूँ कहें कि शब्द का वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति है वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, गाय दूध देती है, तो इन वाक्यों का स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति, जिस वाक्य में मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो, यानी उसका मुख्यार्थ प्रकट न हो या वाच्यार्थ प्रकट न हो, और शब्द के गुण क्रिया के आधार पर उनका अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे राम तो सदा चौकन्ना रहता है, ये एक वाक्य है। अब इसका सीधा अर्थ ये होता है कि राम के 4 कान हैं। अब राम के कुछ 4 कान हो नहीं सकते, अर्थात राम हमेशा सावधान रहता है। अर्थात इस शब्द के लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। जैसे राजस्थान जाग उठा, अब राजस्थान जाग उठे का मतलब है राजस्थान के निवासी है वो जाग उठे। तो इस प्रकार जहाँ मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा आने पर, जब शब्द से गुण क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। फिर तीसरी शब्द शक्ति है वो वंजना शब्द शक्ति, और वंजना का अर्थ होता है छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति होती है वो वंजना शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात जब न तो मुख्यार्थ प्रकट हो और न लक्ष्यार्थ प्रकट हो, अर्थात तीसरा ही अर्थ निकाला जाए, तो वहाँ पर वंजना शब्द शक्ति होती है। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो, तब उसका बोध कराने वाली तीसरी शक्ति है वो वंजना शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे संध्या हो गई। तो अब संध्या हो गई तो इसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। यह मैंने एक उदाहरण लिखाया था आपको, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न शनि गंभीर को घटिए वृक्ष भानुजा वे हल्दर की पी। तो इस प्रकार चाह न तो वाच्यार्थ प्रकट हो और न लक्ष्यार्थ प्रकट हो, अर्थात कोई ध्वन्यार्थ निकलता हो तो वहाँ पर वंजना शब्द शक्ति होती है। और वंजना दो प्रकार की होती है, शाब्दी वंजना और आर्थिक वंजना। तो इस प्रकार आपके ये व्याकरणिक बिंदु शब्द शक्ति है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।